डेनियल की पुस्तक संख्या 113 भविष्यवाणी के त्रिविध अनुप्रयोग का अनावरण बाइबलीय संदर्भ में 11 सितंबर 2001 के महत्व को समझना।
जब प्रभु ने 11 सितंबर 2001 को अपनी अंतिम दिनों की प्रजा को यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर वापस ले आया, तब तक वो भविष्यवाणी के तेहरे सिंह अनुप्रयोग के नियम की पहचान पहले ही कर चुका था।
यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और पुरानी बाटों के विषय में पूछो कि अच्छी राह कौन सी है, उसी पर चलो और तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे, और मैंने तुम्हारे ऊपर पहरे वाले भी ठहराए, ये कहते हुए नरसिंगे की ध्वनि पर ध्यान दो। परंतु उन्होंने कहा, हम ध्यान न देंगे। यिर्मयाह 7:16-17।
जब प्रभु अपने लोगों को पुराने मार्गों पर लौटा लाए, तब उन्हें विश्राम मिला, बाद की वर्षा, और तब पहरेदारों को एक तुरही का संदेश दिया गया। सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के अंत को सबसे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, इसलिए अंतिम दिनों का तुरही संदेश अंतिम तुरही होगा, जो सातवीं तुरही है, जो तीसरा हाय है। जब उसके अंतिम दिनों के लोग पुराने मार्गों पर चलने लगे, तो ये पहचाना गया कि पहली विपत्ति के लक्षण एक विशिष्ट प्रतीकात्मक ऐतिहासिक नेता मोहम्मद की पहचान कराते हैं, और दूसरी विपत्ति ने भी यही किया, उस्मान। ये पाया गया कि पहली चार तुरहियों में से प्रत्येक की पहचान के लिए एक विशिष्ट प्रतीकात्मक नेता था, और तब ये पहचाना गया कि ओसामा बिन लादेन तीसरी विपत्ति का प्रतीकात्मक नेता था। मोहम्मद का संबंध अरब से था, और उस्मान तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का प्रतीक था, और ओसामा बिन लादेन विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद का प्रतिनिधित्व करता था, हालांकि वो मोहम्मद की तरह एक अरब था। ये भी माना गया कि पहली हाय ने रोम की सेनाओं को क्षति पहुंचाई और दूसरी हाय ने रोम की सेनाओं का संहार कर दिया। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को उस बिंदु के रूप में पहचाना गया जब तीसरी हाय के इस्लाम ने रोम की सेना संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षति पहुंचाई, परंतु रविवार के कानून के समय वो रोम की सेना का संहार कर देगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में अपने समापन पर पहुंचेगा और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के त्रिविध संघ को सौंप देगा। ये समझा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति के दो सिंगों वाला पृथ्वी का पशु था। पृथ्वी के पशु का एक प्रमुख भविष्य सूचक लक्षण ये है कि वो मेमने से ड्रैगन में बदल जाता है। भविष्यवाणी की भाषा में सींग शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पृथ्वी के पशु की शक्ति गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद थी, जिन्हें उसके दो सींगों के रूप में दर्शाया गया था। परंतु अब अंतिम दिनों में पृथ्वी के पशु की ये दो शक्तियां बदलकर सैन्य और आर्थिक शक्ति हो गए हैं। 11 सितंबर 2001 को तीसरी विपत्ति से संबंधित इस्लाम ने पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के पशु का प्रतीक है, पेंटागन पर, जो उसकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, और न्यूयॉर्क सिटी के ट्विन टावर्स पर, जो उसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, प्रहार किया। जब ये भी पहचाना गया कि पहली विपत्ति के प्रारंभिक इतिहास और दूसरी विपत्ति के समापन इतिहास दोनों 144,000 की मुहरबंदी का चित्रण प्रस्तुत करते थे, तब ये समझा गया कि तीसरी विपत्ति के आगमन पर जब न्यूयॉर्क की विशाल इमारतें ढहा दी गईं, 144,000 की मुहरबंदी की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।
क्या अब ये बात फैलाई जा रही है कि मैंने ये घोषित किया है कि न्यूयॉर्क एक जारीय लहर से बहा दिया जाएगा? ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने इतना कहा है कि जब मैं वहां एक के ऊपर एक उठती हुई उन विशाल इमारतों को देखती थी, तो कहती थी, जब प्रभु पृथ्वी को भयानक रीति से कंपाने के लिए उठ खड़ा होगा, तब कितने भयानक दृश्य घटित होंगे। तब प्रकाशित वाक्य 18:22-23 के वचन पूरे होंगे। प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय समस्त रूप से इस बात की चेतावनी है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है, परंतु न्यूयॉर्क पर क्या आने वाला है, इसके विषय में मुझे विशेष रूप से कोई ज्योति नहीं दी गई है। केवल इतना जानती हूँ कि एक दिन वहाँ की वे महान इमारतें परमेश्वर की शक्ति के घुमाने और उलट पुलट देने से ढा दी जाएंगी। मुझे दी गई ज्योति से मैं जानती हूँ कि संसार में विनाश उपस्थित है। प्रभु का एक वचन, उसकी महान शक्ति का एक स्पर्श, और ये विशाल संरचनाएं गिर पड़ेंगी। ऐसे दृश्य घटित होंगे जिनकी भयावहता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिव्यू एंड हेरल्ड, July 5, 1906।
संसार में जो विनाश है इस्लाम का चरित्र है, क्योंकि उसका चरित्र प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 पद 11 में अपोलियन और अबद्दोन के रूप में दर्शाया गया है।
और उन पर एक राजा था जो अथाह कुंड का स्वर्गदूत है, जिसका नाम इब्रानी भाषा में अबद्दोन है, पर यूनानी भाषा में उसका नाम अपोलियन है। प्रकाशित वाक्य 9:11।
इस्लाम पर शासन करने वाले राजा के नाम या चरित्र का अर्थ, जैसा कि इब्रानी और यूनानी दोनों में उन दो नामों द्वारा व्यक्त किया गया है, मृत्यु और विनाश है, जो 11 सितंबर 2001 को तब आ पहुंचे जब न्यूयॉर्क की विशाल इमारतें ढा दी गईं। उसी समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद 1-3 की पूर्ति आरंभ हुई। ये समझा गया कि उत्पत्ति की पुस्तक में इस्लाम के जंगली मनुष्य का पहला उल्लेख इब्रानी के उस शब्द का प्रयोग करता है जिसका अर्थ अरबी वन्य गधा है, जिसे उस पद में जंगली मनुष्य के रूप में अनुवादित किया गया। इस्लाम का प्रतीक घोड़ों का परिवार बताया गया है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में उसे एक युद्ध घोड़े के रूप में भी दर्शाया गया। हबक्कूक के पवित्र चार्टों पर, जिनके बारे में परमेश्वर की प्रजा को सूचित किया गया था कि उन्हें बदला नहीं जाना चाहिए, इस्लाम को भी युद्ध घोड़ों द्वारा दर्शाया गया था।
और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख को सुन लिया है, और वो वनमानुष होगा, उसका हाथ सब मनुष्यों के विरुद्ध होगा, और सब मनुष्यों का हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वो अपने सब भाइयों के सम्मुख निवास करेगा। उत्पत्ति 16:11-12।
इश्माएल के जन्म का पहला उल्लेख एक संयम से जुड़ा हुआ था, जो इस्लाम से संबंधित एक प्रमुख प्रतीक बन गया।
अब्राम की पत्नी सारै ने उसे कोई संतान नहीं जनी, और उसकी एक दासी थी, एक मिस्री, जिसका नाम हागर था। तब सारै ने अब्राम से कहा, अब देख, प्रभु ने मुझे संतान जनने से रोका है, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरी दासी के पास जा, शायद उसके द्वारा मुझे संतान मिल जाए। और अब्राम ने सारै की बात मानी। उत्पत्ति 16:1-2।
इश्माएल के जन्म द्वारा दर्शाए गए इस्लाम के उसी प्रथम उल्लेख में समर्पण पर जोर दिया गया है। समर्पण की अवधारणा इस्लाम धर्म के लिए मौलिक है। इस्लाम शब्द दो अरबी शब्दों से निकला है, सलाम, जिसका अर्थ शांति है, और असलमा, जिसका अर्थ आज्ञा पालन करना या समर्पण करना है। इस्लाम सिखाता है कि विश्वासियों को जीवन के हर पहलू में अपनी इच्छा को अल्लाह, ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देना चाहिए। जब सारा को यह एहसास हुआ कि हागर को लेने और इश्माएल को जन्म देने के लिए अब्राहम को प्रोत्साहित करके उसने गलत निर्णय लिया था, तो उसने हागर के साथ कठोर व्यवहार करने की अनुमति अब्राहम से प्राप्त की, जिसके चलते हागर अब्राहम के घर से भाग गई। वहां उसे एक स्वर्गदूत से संदेश मिला।
परंतु अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे हाथ में है, उसे जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। और जब सारे ने उसके साथ कड़ा व्यवहार किया तो वो उसके सामने से भाग गई, और यहोवा के दूत ने उसे जंगल में जल के एक सोते के पास, शूर की राह के सोते के पास पाया, और उसने कहा, हे हागर, सारे की दासी, तू कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग रही हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके हाथ के नीचे नम्र होकर रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि उसकी बहुलता के कारण उसे गिना ना जा सकेगा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे क्लेश को सुना है, और वो जंगली मनुष्य होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध होगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध, और वो अपने सब भाइयों के सामने निवास करेगा। उत्पत्ति 16:6-12।
इस्लाम का संयम, समर्पण, जो इस्लाम धर्म के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, और इस्लाम की भूमिका, ये सब इश्माएल के प्रथम उल्लेख में ही है और प्रकाशित वाक्य की तीन विपत्तियों द्वारा निरूपित।
इस्लाम के भविष्यवाणी संबंधी डीएनए का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब प्रभु अपने लोगों को यिर्मयाह की पुरानी राहों पर ले आए, तब उन्होंने ये भी पहचाना कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के 4 स्वर्गदूत जिन 4 हवाओं को रोके हुए हैं, वे विशेष रूप से इस्लाम की 4 हवाएं हैं।
देवदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं। उन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में चित्रित किया गया है जो बंधन तोड़कर पूरी पृथ्वी से झपटते हुए निकल पड़ने को आतुर है और अपने मार्ग में विनाश और मृत्यु लेकर चलता है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज खंड 30 1700 सबाने।
इस्लाम का क्रोधित घोड़ा और वे 4 हवाएं जो रो की गई है, जबकि 144,000 मोहर लगाई जा रही है, अपने पथ में मृत्यु और विनाश अबैडन एंड अपोलियन लेकर चलते हैं। जैसे हगार पर लगाई गई रोक ने उस भविष्य सूचक गुण को इस्लाम के प्रतीक में स्थापित कर दिया, वैसे ही 4 हवाएं और क्रोधित घोड़ा दोनों रोके गए हैं। और इस तथ्य के रहते ये पहचाना गया कि पहली विपत्ति की शुरुआत, जैसा कि अबू बकर के ऐतिहासिक आदेश द्वारा दर्शाया गया है, इस्लाम पर लगाई गई एक रोक की पहचान करती है।
और उन्हें ये आज्ञा दी गई कि वे न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाएं, परंतु केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथों पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:4।
पंक्ति दर पंक्ति दूसरी विपत्ति की शुरुआत, जो तीनों विपत्तियों के तिहरे अनुप्रयोग में पहली विपत्ति की शुरुआत पर अध्यारोपित है, 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दिए जाने को चिन्हित करती है, जो उस पद में इस्लाम के दूसरे महान जिहाद के छोड़े जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जिसके पास तुरही थी, उस 6 स्वर्गदूत से कहा गया, महान नदी यूफ्रात में बंधे हुए 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दे। प्रकाशित वाक्य 9:6-4।
अतः ये समझा गया कि तीसरी विपत्ति की शुरुआत में इस्लाम को मुक्त भी किया जाएगा और नियंत्रित भी रखा जाएगा, जो ठीक ठीक बहन वाइट की गवाही है।
उस समय जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर क्लेश आएंगे और राष्ट्र क्रोधित होंगे, फिर भी उन्हें इस प्रकार नियंत्रित रखा जाएगा कि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न पड़े। उसी समय परवर्ती वर्षा या प्रभु की उपस्थिति से मिलने वाली ताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची आवाज को शक्ति मिले और संतों को तैयार किया जाए कि वे उस अवधि में दृढ़ बने रहें जब 7 अंतिम विपत्तियां उंडेली जाएंगी। प्रारंभिक लेखन 85।
जब इस्लाम के ऐतिहासिक अभिलेख की जांच की गई तो पाया गया कि पहली विपत्ति के काल में अरबी इस्लाम के युद्ध और उपलब्धियों को इस्लाम पहला महान जिहाद समझता है, और 4 स्वर्गदूतों के मुक्त होने पर जो उस्मानी साम्राज्य का युद्ध प्रारंभ हुआ, उसे इस्लाम दूसरा महान जिहाद मानता है। त्रिविध अनुप्रयोग के अनुरूप इस्लाम मानता है कि तीसरा और अंतिम महान जिहाद 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ। जैसा कि विलियम मिलर ने एक बार लिखा था, इतिहास और भविष्यवाणी एक मत है। पंक्ति पर पंक्ति के उस अनुप्रयोग की, जिसमें रिहाई और साथ साथ रोक शामिल है, जैसा कि पहले और दूसरे हाय की प्रारंभिक भविष्य सूचक रेखाओं को एक दूसरे पर रखकर दर्शाया गया है, भविष्यवाणी की आत्मा द्वारा पूर्णतः पुष्टि की गई। और 11 सितंबर 2001 को इस्लाम के प्रहार के तुरंत बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत करके इस्लाम पर विश्वव्यापी रोक लगा दी। इस्लाम के क्रोधित घोड़े को एक ही समय में छोड़े जाने और रोके जाने की बात की पुष्टि बाइबल, भविष्यवाणी की आत्मा और इतिहास तीनों ने की।
जो लोग मेमने का अनुसरण करते हुए मिलरवादी पुराने मार्गों की ओर लौटते हैं, वे उस विश्राम को पाते हैं जो कि अंतिम वर्षा है, जिसके बारे में बहन व्हाइट कहती है कि ये तब आरंभ होती है जब राष्ट्र क्रोधित होते हैं, फिर भी काबू में रखे जाते हैं, जैसे वे 11 सितंबर 2001 को थे।
उस समय जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर क्लेश आएंगे और राष्ट्र क्रोधित होंगे, फिर भी उन्हें इस प्रकार नियंत्रित रखा जाएगा कि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न पड़े। उसी समय परवर्ती वर्षा या प्रभु की उपस्थिति से मिलने वाली ताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची आवाज को शक्ति मिले और संतों को तैयार किया जाए कि वे उस अवधि में दृढ़ बने रहें जब 7 अंतिम विपत्तियां उंडेली जाएंगी। प्रारंभिक लेखन 85।
जो लोग मेमने का अनुसरण करते हुए मिलराइटू के पुराने मार्गों पर लौटते हैं वे उस विश्राम को पाते हैं जो अंतिम वर्षा है, जिसके विषय में सिस्टर वाइट बताती हैं कि वो तब आरंभ होती है जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत 11 सितंबर 2001 को उतरा।
पिछली वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसनी है। एक सामर्थी स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरना है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित होनी है। रिव्यू एंड हेराल्ड 21 अप्रैल 1891।
वह बलवान स्वर्गदूत तब उतरा जब न्यूयॉर्क की इमारतें गिरा दी गईं, 144,000 की मुहरबंदी शुरू हुई और अंतिम वर्षा की फुहारें पड़ने लगीं। जो लोग यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर वापस ले जाए गए और जिन्हें विश्राम जो कि अंतिम वर्षा है मिल गया, उन्होंने तब ये पहचाना कि यशायाह का विश्राम और ताजगी भी वही अंतिम वर्षा है। परंतु ये उस परीक्षा की पहचान भी थी जो 11 सितंबर 2001 को परमेश्वर की प्रजा के सामने और विशेषकर उन ठट्ठा करने वालों के सामने जो यरूशलेम पर शासन करते थे आ खड़ी हुई। वे ये समझने लगे कि वह परीक्षा दोहरी थी, क्योंकि वह तीसरे हाय में इस्लाम के संदेश का प्रतिनिधित्व करती थी और उतना ही महत्वपूर्ण ये कि वह उस बाइबलीय पद्धति का भी प्रतिनिधित्व करती थी जिसने अंतिम वर्षा के संदेश को स्थापित किया।
जिनसे उसने कहा, ये वो विश्राम है जिसके द्वारा तुम थके मांदे को विश्राम दिला सकते हो और ये ताजगी है, तो भी वे सुनना नहीं चाहते थे। परंतु उनके लिए यहोवा का वचन था, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ताकि वे जाकर पीछे की ओर गिर पड़ें और टूट जाएं और फंसें और पकड़े जाएं। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम में इस प्रजा पर शासन करते हो, यहोवा का वचन सुनो। यशाया 28:12-14।
पुराने मार्गों पर चलने से परमेश्वर की अंतिमकालीन प्रजा को ये देखने को मिला कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जो एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को दर्शाता है, 144,000 के मुद्रांकन के समय अक्षरशः दोहराया जाना था। जिस इतिहास में ये दृष्टांत पहली बार पूरा हुआ था, उसकी गवाही ने ये स्पष्ट किया कि हबक्कूक का दूसरा अध्याय सीधे इस दृष्टांत से जुड़ा हुआ था और उसी का भाग था। इसलिए हबक्कूक 2 का विवाद उस विश्राम और ताजगी की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता था जिसे ठट्ठा करने वाले लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विश्वास योग्य बाइबल विद्यार्थी पुराने मार्गों की जांच पड़ताल करते रहे, उन्होंने समझा कि 10 कुमारियों का दृष्टांत और हबक्कूक का दूसरा अध्याय एक ही भविष्यवाणी थे और यहेजकेल का 12वां अध्याय भी वही था।
यहेजकेल की भविष्यवाणी का एक भाग भी विश्वासियों के लिए शक्ति और सांत्वना का स्रोत था। प्रभु का वचन मेरे पास आया ये कहते हुए, हे मनुष्य के पुत्र, इज़राइल के देश में तुम्हारे पास जो कहावत है वो क्या है, कि दिन लंबे हो रहे हैं और हर दर्शन निष्फल हो जाता है। इसलिए उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, दिन निकट हैं और हर दर्शन की पूर्ति मैं बोलूँगा और जो वचन मैं बोलूँगा वो पूरा होगा, अब वो और विलंबित ना होगा। इज़राइल के घराने के लोग कहते हैं, जो दर्शन वो देखता है वो बहुत दिनों के लिए है और वो दूर के समयों के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, अब मेरे किसी वचन में विलंब नहीं होगा, परंतु जो वचन मैंने कहा है वो पूरा किया जाएगा। हेजकेल 12:21-27:30 महान विवाद 319 तलक।
144,000 की मुहरबंदी की अवधि, जिसे 1840 से 1844 के एडवेंट आंदोलन द्वारा दर्शाया गया है, अंतिम दिनों के उस समय काल का प्रतिनिधित्व करती है जब हर दर्शन का प्रभाव घटित होगा। पहली विपत्ति का भविष्य सूचक इतिहास दूसरी विपत्ति के भविष्य सूचक इतिहास पर रखा जाए तो तीसरी विपत्ति के भविष्य सूचक इतिहास की पहचान करता है, जो 144,000 की मुहरबंदी का भविष्य सूचक इतिहास है। ये 1840 से 1844 का इतिहास भी है। ये वो इतिहास भी है जहां वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले दूत का कार्य पूरा होता है। ये वो इतिहास है जहां पृथ्वी के पशु के दो सींग छठे से उस आठवें तक जो सात में से है एक परिवर्तन से गुजरते हैं। ये वो इतिहास है जहां प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में दो भविष्यद्वक्ताओं को सड़क पर मार डाला जाता है। फिर भी उतना ही महत्वपूर्ण होए ये तथ्य है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता और इस सिद्धांत के साथ कि सभी भविष्यवक्ता किसी भी अन्य काल से अधिक अंतिम दिनों के बारे में बोल रहे हैं, 11 सितंबर 2001 को भविष्यवाणी के दिन निकट है जब जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं पूरे होंगे और अब इसमें और विलंब नहीं होगा। 1863 के विद्रोह ने लाओदीकियाई एडवेंटिज्म को ये ठहरा दिया कि वे सब के सब मर जाने तक मरुभूमि में भटकते रहे। प्रभु 11 सितंबर 2001 को उसी इतिहास पर फिर लौट आए जैसा कि उन्होंने कादेश में प्राचीन इसराइल के साथ किया था। कादेश की पहली यात्रा के परिणाम स्वरूप 10 गुप्तचरों का विद्रोह हुआ और मरुभूमि में भटकने का समय आ गया। 40 वर्षों के अंत में वे कादेश लौट आए और वहीं मूसा ने दूसरी बार चट्टान पर प्रहार किया और उन्हें प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया, परंतु वे यहोशू के साथ उसमें प्रवेश कर गए। 11 सितंबर 2001 अंतिम पीढ़ी को चिह्नित करता है और परमेश्वर अब अपने वचन को और विलंबित नहीं करेगा। हम इस तथ्य पर अगले लेख में चर्चा करेंगे।
इसराइल के मरुभूमि जीवन का इतिहास परमेश्वर के इसराइल के हित के लिए समय के अंत तक लिपिबद्ध किया गया था। मरुभूमि के भटकने वालों के साथ परमेश्वर का व्यवहार, उनके इधर उधर के समस्त आवागमन में, भूख, प्यास और थकावट का सामना करने में और उनकी राहत के लिए उसकी शक्ति के चमत्कारपूर्ण प्रगटीकरणों में एक दिव्य दृष्टांत है जो हर युग में उसके लोगों के लिए चेतावनी और शिक्षा से परिपूर्ण है। इब्रानियों के विविध अनुभव कनान में उनके प्रतिज्ञात घर के लिए तैयारी का एक विद्यालय थे। परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में उसके लोग नम्र हृदयों और सीखने योग्य आत्माओं के साथ उन अग्नि परीक्षाओं का पुनरावलोकन करें जिनसे प्राचीन इसराइल होकर गुजरा, ताकि वे स्वर्गीय कनान के लिए अपनी तैयारी में शिक्षित हों। वो चट्टान जिसने परमेश्वर की आज्ञा से प्रहार किए जाने पर अपना जीवनदायी जल प्रवाहित किया, मसी का प्रतीक थी जो आहत और कुचले गए ताकि अपने लहू से नष्टप्राय मनुष्य के उद्धार के लिए एक सोता तैयार हो सके। जैसे चट्टान पर एक ही बार प्रहार किया गया था, वैसे ही मसीह को बहुतों के पाप उठाने के लिए एक ही बार अर्पित होना था। पर जब मूसा ने कादेश में अविवेकपूर्वक चट्टान पर प्रहार किया तो मसीह का वो सुंदर प्रतीक बिगड़ गया। हमारे उद्धारकर्ता का दूसरी बार बलिदान होना न था, चूंकि महान बलिदान केवल एक ही बार चढ़ाया गया, इसलिए जो लोग उसके अनुग्रह की आशीषें चाहते हैं उनके लिए केवल यही आवश्यक है कि वे यीशु के नाम से मांगे, पश्चातापी प्रार्थना में हृदय की अभिलाषाएं उंडेलें। ऐसी प्रार्थना सेनाओं के प्रभु के सम्मुख यीशु के घामों को रख देगी और तब प्यासे इसराइल के लिए बहे जीवनदायी जल के प्रवाह द्वारा प्रतीकित जीवनदायी लहू फिर से बह निकलेगा। केवल परमेश्वर पर जीवित विश्वास और उसकी आज्ञाओं के प्रति नम्र आज्ञाकारिता के द्वारा ही मनुष्य ईश्वरीय स्वीकृति पाने की आशा कर सकता है। कादेश में उस महान चमत्कार के अवसर पर लोगों की लगातार बड़बड़ाहट और विद्रोह से थककर मूसा का ध्यान अपने सर्वशक्तिमान सहायक से हट गया। उसने इस आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, तुम चट्टान से कहो और वो अपना जल निकालेगी, और दिव्य सामर्थ्य के बिना उसने क्रोध और मानवीय दुर्बलता का प्रदर्शन करके अपनी गवाही को कलंकित कर दिया। जो व्यक्ति अपने कार्य के अंत तक पवित्र, दृढ़ और निस्वार्थ बना रहना चाहिए था और रह भी सकता था, वो अंततः पराजित हो गया। जहां उसे आदर मिल सकता था और उसके नाम की महिमा हो सकती थी, वहां इसराइल की मंडली के सामने परमेश्वर का अपमान हुआ। मूसा के विरुद्ध तुरंत घोषित किया गया निर्णय अत्यंत कठोर और अपमानजनक था कि उन्हें विद्रोही इसराइल के साथ यर्दन पार करने से पहले ही मरना होगा। पर क्या मनुष्य ये दावा करेगा कि प्रभु ने अपने सेवक के साथ केवल उस एक अपराध के लिए कठोरता से व्यवहार किया? परमेश्वर ने मूसा को वैसा सम्मान दिया था जैसा उस समय किसी अन्य जीवित मनुष्य को नहीं दिया था। उन्होंने उसके पक्ष का बार बार समर्थन किया था। उन्होंने उसकी प्रार्थनाएं सुनी और उससे आमने सामने ऐसे बात की जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से बात करता है। मूसा को जितना प्रकाश और ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी अनुपात में उसके दोष की गंभीरता बढ़ी थी। साइंस ऑफ द टाइम्स, 7 अक्टूबर 1880।